هاری کریشنا. بہت آبھار پرکٹ کرتے ہیں چنمیہ مشن کے یہاں سب کاریہ کرتاؤں کا جنہوں نے بھگوت گیتا کے پانچویں ادھیائے کے اوپر ستسنگ کرنے کی سیوا کا اوسر ہم کو پراپت کیا ہے. ہم بہت بڑے آبھار پرکٹ کرتے ہیں سنستھا کے پدادھیکاریوں کا اور انتراشٹریہ کرشن بھاونا امرت سنگھ کے بھکتوں کی اور سے آپ سب کا سواگت کرتے ہیں آج کے اس سائن کال کے ستسنگ میں. 89 کا مطلب ہو گیا 90 سے ایک سال پہلے اکتوبر مہینہ ہوگا میرے خیال میں جنماشٹمی کے بعد کا. امریکہ میں ایک پروچن سوامی جی کا پرتیکشم وہاں اس میں ہوٹل کے 5-star ہال میں تھا. وہاں سے ہو کے پھر کسی سندھی کے گھر میں پرساد تھا وہاں گئے تھے اور تب پرسپر ملن ہوا تھا. تو بھگوت گیتا کا وشیش روپ سے ان کا وشو بھر میں پروچن ہوتے تھے اور بہت لوگ شردھا کے ساتھ سنتے تھے اور ایک کچھ سمے میں ان کے ساتھ پارتھ ساتھ تھی جس ساتھ میں ہوا کرتے تھے. لیکن بتانے یہ کن کا آپ کے دلجی بھائی کا نام وہی میں آپ کے گھر دیکھا تھا میں بار بار دیکھ رہا ہوں. پارتھ ساتھی جی ایک تھے وہ لکھتے تھے بہت زیادہ ان کے سنگ میں. وہ اس وقت وہاں آئے تھے ان کو تو ہم اپنے کیندر پہ لائے تھے اور چرچا کی تھی. تو یہ بہت پرانا آلموسٹ 25-26 سال پرانی سمرتی ہو رہی ہے. بھگوت گیتا شریمد بھگوت گیتا یہ بھگوان کا گیت ہے. اس کو گیتا نہیں کہنا چاہیے بھگوت گیتا کہنا چاہیے. بھگوت مکھی ہے گیت گون ہے. بھگوت کا مطلب بھگوان کا گیت ہے. گیت تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ بھگوان کا گیت ہے. تو اس کی مکھی ہے اس میں مکھی چیز ہے کہ یہ بھگوان کے وچن ہے. یا سوئم مکھ پدم نابھسیا یہ بھگوان پدم ناب کے مکھ سے نکلے ہیں. بھگوان گنگا کے چرنوں سے نکلتی ہے پھٹی تپاونی ہے. تو یہ بھگوان کے مکھ کے وچن امرت ہے. تو پہلے تو بھگوان شری کرشن اس کا وکتا ہے اور سیدھا وہ ارجن کے مادھیم سے ہم کو شکشا دے رہے ہیں. پارتھو وتس سدھیر بھوکتا گیتا مرتم مہان. جو سدھیر ہیں جو بہت دھیرجوان ہیں وہ اس گیتا کے امرت کا رس آسوادن کریں گے. تو اب آج ہمارے وشے جو ورنن کا وشے ہے ستسنگ کا اتھوا جو پروچن کا وشے ہے وہ ہے پانچواں ادھیائے بھگوت گیتا کا. پانچواں ادھیائے بھگوت گیتا کا کرم سنیاس یوگ. اگر آپ کبھی دیکھیں گے ویسے تو گیتا مدھیم مہا بھارتم اشٹادش ادھیائنی امب. یہ گیتا مہا بھارت کے اندر بھیشم پرو میں 25 ادھیائے سے لے کر 43 تک ہے. 25-43 کسی ادھیائے کا کوئی نام نہیں وہاں. کسی ادھیائے کا کوئی نام نہیں. کچھ مہاتماؤں نے سنتوں نے ادھیائے کے اندر کچھ وشیشتائیں دیکھی ان کے انترگت اس ادھیائے کا کچھ وشیش نام انہوں نے دیا. تو مہابھارت میں کسی ادھیائے کا نام نہیں. یہ نام رشیوں نے آچاریوں نے اس ادھیائے کے اندر جو مکھیہ وستو ہے اس کے آدھار کے اوپر دیا. جیسے پہلے ادھیائے میں ارجن کو وشاد ہو گیا تو اس کا نام وشاد یوگ دے دیا. دوسرے ادھیائے میں بھگوان نے کہا میں نے سانکھیا سے آپ کو جیو کو جیو آتما کو شریر سے الگ کر کے بتایا اس لیے اس کا نام سانکھیا یوگ دے دیا. تیسرے ادھیائے میں کرم یوگ نام دے دیا. چوتھے ادھیائے میں بھگوان سوئم نے دیویہ گیان دیا ہے تو گیان ہو گیا. اب چوتھے ادھیائے کے 16 شلوک میں دیکھیں گے تو بھگوان نے گیان کی بڑی مہما کہی. फिर 41वें श्लोक में कहा है कि ज्ञान तो सबसे ज्ञान की नाव में चढ़ने वाला संसार से पार हो जाता है, और 42 श्लोक में कहा अर्जुन तुम उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन को जरा कन्फ्यूजन हो गया। तो 5वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। एक बात आज समझ लेनी चाहिए कि अर्जुन भगवान का नित्य सखा है, वो कन्फ्यूज नहीं हो सकता था, भगवान ने उसको मोह में डाला है हमको शिक्षा देने के लिए। अगर आप पहले अध्याय को ठीक तरह से देखेंगे तो अर्जुन के धनुरुद्धमय ऋषिकेश धनुष को उठा लिया, सैन्यों और मध्य रथम स्थापित में अचुत रथ को बीच रथ में खड़ा करो। भगवान मुस्कुराते कहते क्या करना है, बोला निरीक्षे हम देखना चाहता हूँ कौन दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथी है। भगवान ने रथ कहाँ जाके खड़ा किया, भीषम द्रोण परमुक्ताम सर्वेशम च महीक्षण, भीषम और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया, और खड़ा भी नहीं किया, उंगली ऐसे उठाई। और कृष्ण पहले अध्याय में बोले हैं आधा श्लोक, वो दिखता नहीं है, 25वें श्लोक का आधा कृष्ण के वचन है, पश्चेताम कुरुनीति, देखो ये तुम्हारे अपने खानदान के हैं सारे। उस श्लोक को सुनते ही अर्जुन कहता ये मेरे पिता, ये मेरे मामा, ये मेरे चाचा, मैं नहीं लड़ूंगा। कृष्ण के उंगली के इशारे ने अर्जुन को मोह में डाला। और अर्जुन से दिखाना क्या था, इस मोह से भगवान को क्या दिखाना था, कि अर्जुन भक्त है, दयालु है, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहता। ये दिखाना था कि भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, किसी को दुख नहीं देना चाहता। और फिर शंख कितने बजाया पहले अध्याय में, विषम पिता मैंने, इसका मतलब युद्ध होता वो करना चाह रहे थे। और पांडवों में किसी ने शंख बजाया क्या, नहीं कृष्ण ने बजाया। तो पांडव तो अर्जुन तो युद्ध करने वाला नहीं था, पांडव अर्जुन कृष्ण ने शंख बजाया, उसके तो सेनापति ने बजाया, इसके सेनापति ने नहीं बजाया। इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण की ये सारी रचना है। एक बेंगलोर के बहुत बड़े विद्वान है, उसने 2 18 डेज आपको महाभारत पुस्तक लिखा है, उसमें बाहर गरुड़ ध्वज लिख रखा है, उर्दू में कपि ध्वज नहीं रखा है, बोला भले लड़ा अर्जुन है लेकिन काम सब कृष्ण ने किया है, उसने ऊपर फोटो बार रखा है गरुड़ ध्वज का, बहुत अच्छा है लिखा, आप देखा है उसको, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल बुक, 2 वॉल्यूम है, 2 18 डेज ऑफ महाभारत वार, एक एक दिन क्या हुआ। और उसमें पहले दिन ही भीष्म रात को कहता अब मैं किस तरफ जाऊं, किसका साथ दूं। तो भगवान श्री कृष्ण उनके ध्यान तो करते थे, सामने आए, बोला गंगा पुत्र आपने पहले 2 विभाग क्यों किए पूरे देश के, आधा 2 टुकड़ा की आपकी पहली गलती, आपको ये करना ही नहीं चाहता, दूसरा आपने देश का विभाजन ही क्यों किया, आधा धृतराष्ट्र के बेटों को और आधा पांडव के बेटों को क्यों दिया, ये आपकी पहली गलती थी, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और फिर आपने ऐसा वचन ही क्यों किया, जब आप स्वयं उसके अधिकारी थे उसको छोड़ा ही क्यों, ये अपने व्यक्तिगत केवल स्वाभिमान के लिए आपने धर्म को छोड़ दिया। भगवान ने उसके जो त्रुटियां थी वो सब बताई। फिर भीष्म ने कहा आखिर मैं कैसे इस वक्त आपकी सेवा कर सकता हूँ, बोला अगर आप हमारी तरफ आएंगे तो फिर ये लड़ेंगे नहीं, फिर तो इनका सारा लड़ाई वाला विचार खत्म हो जाए, इसलिए अब आप मेरी सेवा मेरे सामने लड़के करो, ये भी मेरी सेवा है। तो भगवान ने भीष्म को कैसे सेवा में लगाया, पर अद्भुत वर्णन है। तो यहाँ ये प्रश्न जो अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहा है, ये अर्जुन का दूसरा प्रश्न है। 3रे अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है, वही प्रश्न है कि कर्म करो या कर्म को छोड़ दो, ये भी वही प्रश्न है। और 18वें अध्याय तक 3 बार अर्जुन ये प्रश्न पूछेगा कि काम छोड़ दूं, संन्यास ले लूं वो ठीक है, या काम करूं ये ठीक। और 3ों बार श्री कृष्ण कहते हैं काम कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता, काम के फल में आसक्ति को छोड़ो, बस काम कभी नहीं छोड़ा जा सकता, कभी काम नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए अब 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न क्या है, पहला अर्जुन प्रश्न पूछता है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च, पहले आपने कहा कर्म का संन्यास ले लो, कर्म का संन्यास का अर्थ क्या है, असल में ज्ञान योग के मार्ग में एक स्तर में जब आदमी पक्का हो जाता है तो सारे कर्मों का परित्याग कर देता है। तो ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग को कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। तो आपने ज्ञान की इतनी बड़ी चर्चा की है और फिर आपने क्या कहा कर्म योग, आपने कहा कि अब आप अपना क्षत्रिय के कर्म को करो, उत्तिष्ठ परंतप उठो, विगत ज्वर तुम्हारे को बुखार जो आ रहा है इसको उतारो, ज्वर का मतलब बुखार है, तो तेरे को बुखार आ गया, अर्जुन को बुखार आया पहले अध्याय में, चीदन तीमम गात्राणि मुखम च परिषद, जैसे आदमी को बुखार आता है हाथ कांप रहे हैं शरीर सारा जो गर्म हो रहा है, तो ये बुखार के सिम्टम है। तो अर्जुन कहता है पहले आपने कहा कि कर्म, पहले आपने कहा कि कर्म को छोड़ दो, कर्म का संन्यास ले लो, सांख्य योग का उसका अर्थ है सांख्य योग, सांख्य योग को कर्म योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, सांख्य योग या ज्ञान योग या कर्म संन्यास तीनों का अर्थ एक है, कर्म संन्यास, सांख्य योग और तीसरा ज्ञान योग, तीनों का अर्थ एक है। और फिर क्या कहा आपने पुनर योगम च संश्री, आपने दोबारा कहा कि मैं उठ के कर्म करूं आपकी आज्ञा के अनुसार। अब बताइए इन दोनों में से श्रेय क्या है, एतयोर एकम तन्मे ब्रूहु सुनिश्चितम, इन दोनों में से एक मुझे बताओ। अब अर्जुन इसका अर्थ है समझ रहा है कि ये दो चीजें अलग हैं और भगवान सिखा रहे हैं कि ये दो अलग नहीं है, ये दो स्तर हैं एक ही काम के, काम एक ही है लेकिन दो स्तर हैं और दोनों का फल भी एक ही है। तो भगवान का उत्तर क्या है पहला, संन्यास कर्म योगस्य नश्रयास करो भव, दोनों ही बहुत महान है, दोनों ही कैसे निश्रेयस, दोनों ही महान है, दोनों अच्छे हैं। पहला तो ये कह दिया, फिर क्या कहते हैं ये बहुत मुख्य है, तयोस्तु उन दोनों में से कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेष्यते, कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है, क्यों विशेष है कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष क्यों है, एक ही उत्तर है इसका। हमारे पहले तो आत्मा जो है ना वो हमेशा एक्टिव है, आत्मा तो हमेशा एक्टिव है, क्या कहेंगे इसको हिंदी में शब्द, सक्रिय रहता है, और इंद्रियां कभी भी चुप नहीं कर सकती, इंद्रियां काम करें, आंख देखने का काम बंद नहीं कर सकती, काम सुनने का काम बंद नहीं कर सकता है। तो इसलिए ज्ञान योग में जब कहते हैं कर्म छोड़ दो तो वो नेचर जो वो प्रकृति के विपरीत है, क्योंकि प्रकृति तो आंख देखेगी, आंख को बंद कैसे करेंगे, क्योंकि आत्मा सक्रिय रहे एक्टिव है इसलिए सेंसेस को एंगेजमेंट चाहिए। तो कर्म योग में इंद्रियों को एंगेज किया जाता है, सेवा में लगाया जाता है, तो इंद्रियां सेवा के माध्यम से पवित्र होती है। कर्म योग का फल क्या है, अंतःकरण की शुद्धि, कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि मतलब मन की शुद्धि असल में। तो फिर पक्के अवस्था में ज्ञान योग में जाएगा तो ठीक है, कच्ची अवस्था में गया तो बहुत दुख पाएगा, जबरदस्ती इंद्रियों को रोकेगा तो बहुत बड़ा मिथ्याचार हो जाएगा, बाहर से तो कहेगा कुछ नहीं करूंगा लेकिन अंदर से सब इंद्रियों में मन भागता रहेगा। तो इसलिए भगवान का पहले निर्णय क्या है, कर्म योग श्रेष्ठ है, दोनों अच्छे हैं लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। और फिर छह श्लोक तक, एक से छह श्लोक तक प्रश्न उत्तर है और उसमें यही बताते हैं कर्म योग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, पहले से छह तक, और सात से लेकर बारह तक भगवान, जिसमें आज का हमारा दसवां श्लोक है, भगवान कहते हैं वो कर्म योग कैसे करना चाहिए, प्रक्रिया क्या है कर्म योग की। और फिर तेरह से लेकर आगे भगवान कहेंगे कि ज्ञान जो आप ज्ञान कह रहे हैं वो असल में ज्ञान करता कौन है, आत्मा करता है, परमात्मा करता है, प्रकृति करता है, कौन करता है, उसका विभाजन करके भगवान बताते हैं। और फिर अंत में परमात्मा का ध्यान करने से, परमात्मा में मन लगाने से कैसे आपका कर्म करते हुए भी कमल पत्र की तरह आप निश्चित होगी। और अंत में दो श्लोक बीच में आएंगे जिसमें अष्टांग योग की भूमिका है, जो छठा अध्याय बोलना है, 27 और 29 श्लोक जो है वो पूर्ण आहुति का है, शांति का साधन। तो तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं सन्यासी जो मध्यवेश, वो सदा ही सन्यासी है जो कभी किसी कर्म में ना आसक्ति है न उसमें द्वेष करता है, काम करता है तो काम समझ के, आसक्ति नहीं है द्वेष नहीं है तो वो सन्यासी है। और निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात परमुच्यते, वो काम करते हुए भी द्वंद्वों से मुक्त हो गया तो परम सुखी है, वो कर्म सन्यासी से भी अच्छा है क्योंकि वो काम करता है लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है। फिर कहते हैं सांख्य योगो पृथक बालहा, बच्चे होते हैं वो कहते हैं सांख्य योग अलग है। देखो जो अभी सन्यास योग का सांख्य योग हो गया ना, वहां जिसका नाम सन्यास कर्म सन्यास था वो संख्या हो गया। सांख्य योग यह सांख्य योगो पृथक बालहा, जो बच्चे हैं, बाला का मतलब बच्चे, कम बुद्धि वाले हैं, वो समझते हैं कि सांख्य योग अलग है, पृथक का मतलब अलग है किससे, कर्म योग से। भगवान कहते दोनों अलग नहीं है, क्या है दोनों, प्रवदंती न पंडिता, जो बुद्धिमान है वो दोनों को अलग नहीं मानते। और एकम अपि आस्थित सम्यक, ठीक तरह से अगर एक का भी धारण किया जाए उभयोर विदते फलम, दोनों का फल मिल जाता है। ठीक तरह एक से एक को किया जाए तो दोनों का फल मिलता है। और फिर भगवान पांचवें श्लोक में कहते हैं यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगिरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। अब ये हो गया जो बुद्धिमान है, जिसको ये दिखता है कि दोनों में कोई अंतर है, दोनों उसी मंजिल पे पहुंचते हैं, वो बुद्धिमान है। यहाँ ये प्रक्रिया छठा श्लोक आएगा, यहाँ ये प्रश्न खत्म हो रहा है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आयुक्तम अयोगतः, अगर कर्म संन्यास पहले अगर आपने निष्काम कर्म नहीं किया और सीधा संन्यास ले लिया तो बहुत दुख पाओगे। दुखम पहले शब्द क्या है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आयुक्तम, हे महाबाहु अर्जुन तुम्हारी भले महाबाहु है, तुम बड़ा विद्वान है लेकिन तुम ऐसे जो कहते हो कि मैं यहाँ से रामभूमि छोड़ के और भिक्षा मांग के और जाके संन्यास ले लूंगा, ये बड़ा दुखदाई है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम जब कहीं इसी घर में जाओगे कि भिक्षा दो, बोलेगा अरे चल चल तेरा क्षत्रिय खून खोल जाएगा और तुमसे ये हो नहीं पाएगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये तुम नहीं कर सकते, दुख बहुत दुखदाई है तेरे लिए अर्जुन। और फिर क्या कहते हैं भगवान, अयोग्यतः, अगर योग का अभ्यास नहीं किया है, निष्काम, ये योग कौन से का वर्णन हो रहा है, निष्काम कर्म योग, गीता के अंदर बल दिया हुआ है निष्काम कर्म योग। यहाँ दो शब्द ठीक होने, एक है कर्म कांड जो वेदों के अंदर है, पंडित जिसका यज्ञ आदि कराते हैं, जिसका फल स्वर्ग आदि पुत्र प्राप्ति धन प्राप्ति है, वो कर्म कांड है, वो योग नहीं। उसके बाद सिर्फ कर्म एक है जो वेदों में बताए हुए जीवन उसके आधार पे चला है, सच बोलना है झूठ नहीं बोलना, ये कर्म। योग शब्द जब आएगा इसका अर्थ है कर्म का भगवान के साथ संबंध है, योग शब्द का मतलब है भगवान के साथ कर्म का संबंध। योग शब्द तब आएगा जब भगवान विष्णु के साथ संबंध जुड़ेगा, नहीं तो योग शब्द नहीं। तो कर्म योग का मतलब हम काम करेंगे उसका फल मिलेगा, हम भी भोगेंगे और भगवान को भी अर्पण करेंगे, इसको बोलते हैं सकाम कर्म योग। सकामना, कामना के साथ कर्म करना, काम करेंगे फल मिलेगा, कुछ भगवान को अर्पण करेंगे कुछ हम लेंगे। जैसे आप लोग यहाँ सब रह रहे हैं, मोस्टली काम आप कर रहे हैं, आधा पैसा यहाँ लोकल को दे रहे हैं, आधा आप ले रहे हैं, हिसाब करके ये हो गया सकाम कर्म, दोनों का काम हो रहा है। एक होता है निष्काम कर्म योग, काम मैं करूंगा लेकिन फल भगवान आपको अर्पण कर दें। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा में जो बल दिया गया है, जो बहुत मुख्य है, जिसको कहा गया वो निष्काम कर्म योग है। और निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है, कभी कभी दोनों एक जैसे दिखते हैं, बड़ा सूक्ष्म थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है, कर्म योग में कर्म वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, फल नहीं चाहिए, काम वही करूंगा जो मैं करता हूं, भाई पूजारी हूं मैं पूजा करूंगा, मैं मेरे से भोजन नहीं बनेगा लेकिन मैं मुक्त में कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं भगवान की। लेकिन भक्ति योग में भाई भोजन बनाना है, हाँ जी भोजन बनाना है भगवान के लिए, भाई झाड़ू निकाल, हाँ झाड़ू निकाल लेता हूं, उसमें न कर्म में भी आसक्ति नहीं है और फल में भी नहीं, इसको भक्ति, भक्ति योग में और कर्म योग में इतना ही अंतर है। दोनों में फल में आ सकती नहीं है, लेकिन कर्म योग में काम में आ सकती है कि मैं तो भाई केवल यही काम करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा, लेकिन फल तो नहीं ले रहा हूं ना। तो ये निष्काम कर्म योग हो गया। और कोई भी काम दिया जाए, जैसे कभी कभी कहते हैं आर्मी डिसिप्लिन, भक्ति योग का मतलब आर्मी डिसिप्लिन, आर्मी वाले कहेंगे बंदूक चलाओ बंदूक चलाएगा, बोला गाड़ी चलाओ तो गाड़ी चलाएगा, जो ऑर्डर मिलेगा वही करेगा। तो भक्ति योग का अर्थ है भगवान के इच्छा अनुसार कर्म करना, अपनी इच्छा बीच में नहीं लाना। लेकिन कर्म योग में कर्म की इच्छा अपनी होती है। उदाहरण ऐसे है, सुबह भगवान के लिए भोग बनाना है तो सीधा सा ठीक है पराठा बना के भगवान, लेकिन पहले बच्चे को पूछे बेटा क्या खाओगे, अरे बच्चा कह दे कि आज मैक्रोनी खाएंगे तो मैक्रोनी बनाए फिर भगवान को अर्पण कर दे, तो बनाया बच्चे के कहने के ऊपर अर्पण भगवान को किया, तो ये हो गया निष्काम कर्म योग। इसमें भगवान ने नहीं मांगा, बच्चे ने मांगा, लेकिन भगवान को अर्पण करके फिर दे दिया। तो उसमें क्या है, कर्म हम अपनी मर्जी से करते हैं फिर अर्पण करते हैं। और भक्ति में कर्म भी भगवान की, अर्जुन कौन सा कर्म कर, अपनी इच्छा से कर रहा है क्या युद्ध, नहीं भगवान की इच्छा से कर रहा है। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय में अर्जुन को कहा है भक्तोसी में कर, तुम मेरे भक्त हो क्योंकि तुम काम मेरे लिए करो, मेरे से पूछ के काम करे, अपनी तरफ से नहीं कर रहे। तो देखो आपको थोड़ा सा दोनों में अंतर दिख रहा है, डिफरेंस, ये सूक्ष्म डिफरेंस है। हम काम अपनी इच्छा से करते हैं, फल भगवान को अर्पण करते हैं, वो निष्काम कर्म योग हो गया। हम काम भी भगवान की इच्छा से करें और फल में आसक्ति ही नहीं हो, तो ये भक्ति का परिभाषा। तो भगवान ने कह दिया अर्जुन ये मुझे योग युक्त मुनिर ब्रह्म नचरणादि गच्छति, योग युक्त जो होते हैं, इसका मतलब जो काम में काम के द्वारा मुझसे जुड़े होते, योग युक्त का अर्थ क्या होगा, योग का मतलब निष्काम कर्म योग और युक्त का मतलब मुझसे जुड़े हुए, जो मेरे साथ निष्काम कर्म योग से जुड़े हुए हैं मुनिर, वो मुनि है, वो मननशील है, वो मेरी बात को मानते हैं। मुनि का अर्थ है मननशील है, वो मननशील है, वो मेरी ब्रह्म, वो ब्रह्म पद के ऊपर पहुंच जाएंगे। नचनादि गच्छति, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, अधिक समय नहीं लगेगा, तत्काल ब्रह्म में के स्तर में। वो यहाँ दो शब्द समझना चाहिए, एक भगवत गीता में दो शब्द है जीव के लिए, दोनों शब्द जीव के लिए, एक जीव भूत है एक ब्रह्म भूत है। बद्ध जीव को जीव भूत कहते हैं, जो तीनों गुणों से बधा हुआ है, जो कर्मों के कारण संसार के अंदर जन्म लेके आता है उसको जीव भूत कहते हैं, और जो कर्मों के बंधन से मुक्त है और भगवान से उसका संबंध जुड़ा हुआ है उसको ब्रह्म भूत कहते हैं। तो ब्रह्म भूत का मतलब मुक्त आत्मा और जीव भूत का अर्थ बद्ध आत्मा, इन दोनों से ऊपर परमात्मा है। ये पंद्रहवें अध्याय का उस दिन विषय था, क्षर अक्षर दोनों से ऊपर परमात्मा है। तो यहां आप मुक्त हो जाओगे, इसका अर्थ है ब्रह्म अधिगच्छति का मतलब आप तत्काल मुक्त हो जाओगे, आपको फिर बंधन नहीं हुआ। अब इसके बाद कैसे कर्म करें, ये सातवें श्लोक से शुरू हो गया। सातवें श्लोक भगवान योग युक्तो विशुद्धात्मा विशुद्धात्मा जितेंद्रिय, योग युक्तो, अगर आप योग में स्थित होकर कर्म योग में रहकर मेरी सेवा में लग जाएंगे, भगवान का कहना काम मेरे लिए करोगे, इसका अर्थ है काम मेरे लिए करोगे, फल में आसक्ति नहीं रखोगे, विशुद्ध आत्मा, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। विशुद्ध आत्मा का मतलब यहाँ आत्मा का अर्थ है मन है, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निष्काम कर्म हमारा अंतःकरण शुद्ध करेगा, और फिर विजित आत्मा, फिर आपका मन के ऊपर विजय हो जाएगा, मन आप मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, फिर जित इंद्रिय, और जब मन के ऊपर विजित हो गए तो आपकी इंद्रियों के ऊपर भी विजय हो जाएगी। तो इंद्रियों को भी सेवा में लगा दिया, मन को भगवान के चिंतन में लगा दिया, तो ये क्या हो गया कर्म योग, शब्द क्या है योग युक्तो विशुद्ध आत्मा जित इंद्रिय, हाँ विजित आत्मा जित सर्वभूत आत्मा भूतवात्मा कुरुणपी न लिप्यते, ऐसे कर्म करने वाला जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त की, इंद्रियों को संयम में कर लिया, आत्मा को अंतःकरण को शुद्ध किया, वो संसार में काम करेगा, भूसर्वभूत आत्मा भूत आत्मा जितने प्राणी हैं उन सब के प्रति देखता हुआ, भगवान का सबके अंदर अंश में देखता हुआ भी अपने कार्य को करेगा, तो कभी भी बंधन में नहीं पड़ेगा। तो फिर प्रश्न ये उठता है वो काम कैसे करता है, तो वह दो श्लोकों में कि वो काम कैसे करता है, कौन जो ब्रह्म स्तर पे है, ब्रह्म भूत अधिगच्छति, जो उस स्तर पे उसके काम करने की शैली क्या है। ये श्लोक है कि वो देख आंख से देखता है, बोलता आंख देख रही है मैं नहीं देख रहा हूं, कान से सुनता है कान सुन रहा है मैं नहीं सुन रहा हूं, खाता है मुख खाता है मैं नहीं खा रहा हूं, तो अपने आप को अलग खड़ा कर देता है। ये दो श्लोक है, एक इन दो श्लोकों के अंतर्गत एक भाव की कथा आती है कि गोपियां एक बार कृष्ण को कहा कि हमको सामने दुर्वासा एक ऋषि रहते हैं, दूसरे वाले वो शंकर जी के अंश अत्रि के पुत्र नहीं दूसरे दुर्वासा जमुना के उस तट पे, और ये हमने थाल बनाए हैं भोजन के 56 भोग दुर्वासा मुनि को अर्पण करना है, जमुना बैरिये कैसे जाए। भगवान ने कहा जमुना को कहना कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी रास्ता दे दो। गोपियां हंसने लगी, रात को रास खेलता है हमारे साथ, अब बोलता है अखंड ब्रह्मचारी। उधर जाके बोला कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी रास्ता दे दो, मैया जमुना रास्ता, जमुना ने दे दिया, भोजन जाके रखा दुर्वासा के आगे, दुर्वासा सब खा गया पूरा खा लिया। बोला महाराज अब वापस जाना है, कैसे जाए। बोले आई कैसे थी। बोला कृष्ण ने कहा था कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी का, तो बोला आप बोलो जाके जमुना जी को दुर्वासा निराहारी। बोला निराहारी क्या, सारे थाल खा गया अभी भी निराहारी। बोले जाके बोलो निराहारी। बोला निराहारी, तो वो जमुना ने रास्ता दे दिया, क्योंकि मैंने तो नहीं खाया, मैं आत्मा हूँ, मैं थोड़ी खाता हूँ, ये तो शरीर है ये खाता है मैं नहीं खाता हूँ। तो ये जो दो श्लोक है उसका अर्थ ये है, ये दो श्लोकों में शब्द ऐसे हैं, नैव किंचित करोमि ते, आत्मा कुछ भी नहीं करता है, युक्तो मन्यते तत्ववित, वो तो भगवान के साथ युक्त है जुड़ा हुआ है तत्व रूप से, भगवान का अंश है, पश्यम देखता है, श्रवणम सुनता है, स्पर्शन छूता है, जिग्रम सूंघता है, अश्नन बैठता है, गच्छन चलता है, स्वपन सोता है, शश्वन सांस लेता है, प्रलपन विसर्जन ग्रहण आंखें बंद करता है खोलता है, उन्मिशन निमिशन अपनी इंद्रिया इंद्रिया पावक, ये तो इंद्रिया इंद्रिया में काम कर रहे हैं, मैं थोड़ी काम कर रहा हूँ, आत्मा तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये तो इंद्रिया है अपने विषयों में विचरण कर रही है, वर्तन तिथि धारण उसकी धारणा ये होती, ये कौन सा स्तर हो गया धारणा का, जो योग में धारणा होती है वो पांचवा स्तर है, प्रत्याहार के बाद आती है धारणा ध्यान के बाद, ये सातवा स्तर है, ध्यान धारणा समाधि, समाधि से आगे वाला है, इसका मतलब ये समाधि के स्तर का व्यक्ति है कर्म में, कि इसको अभी किसी में। अब जो ये श्लोक नवा है, अब दसवां आज का श्लोक है, तो भाई किसके लिए काम करें फिर, ये प्रश्न होता है ना, ये सब कुछ करता है तो किसके लिए करता है, खा रहा है किसके लिए खा रहा है, चल रहा है किसके लिए चल रहा है, सो रहा है किसके लिए चल रहा है, तब कहते हैं ब्रह्म आधाय कर्मणि, हो तो ब्रह्म के लिए काम करता है भाई, जिसने दुनिया में भेजा है उसी के लिए काम करता है ना, किसके लिए काम करता है, ब्रह्म आधाय। आधाय का अर्थ होता है उस स्थिति में अपने आप को स्थित करके, मैं भगवान का हूं, भगवान की सेवा मेरा धर्म है, उसको कहते हैं ब्रह्म आधाय। ब्रह्म आधाय कर्माणि, सारे कर्म करता है, संगम त्यक्त्वा, किससे संग किससे संग को संगम त्यक्त्वा, मतलब आसक्ति को छोड़ता है किससे, कर्म के फल से, काम सब करता है लेकिन कर्म के किसी भी फल में आसक्ति नहीं है, क्या होगा हमें काम से काम है। सुबह से शाम तक बैंक में कैशियर कितना पैसा मिलता है, लेकिन उसको तो तनख्वाह उतना ही मिलना है जितना महीने में मिलना है, तो काम तो सुबह से शाम तक करेगा लेकिन उसमें तो उसको कुछ भी नहीं मिलना है, तो उसको कितना आज जमा हुआ कितना गया उसमें कोई आसक्ति नहीं है, उसको तो महीने की तनख्वाह से काम है, तो ऐसे वो काम सारा दिन करता है कि भगवान कोई तो मेरे कुछ नहीं करे, इसमें मेरी कोई आसक्ति काहे के लिए, तो आसक्ति नहीं है तो काम में बंधन नहीं, आसक्ति बंधन का कारण है कर्म बंधन का कारण नहीं है, ये गीता का सिद्धांत है, आसक्ति बंधन का कारण है कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्म तो आप रोक ही नहीं, आप सांस तो लेना बंद थोड़ी करेंगे। एक संत का कहते हैं कि वो पत्थर के ऊपर बैठ गया कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, तो महात्मा ने कहा उठो पत्थर से, उठाया पत्थर को हटाया उसके नीचे जीत मर गया, बोले तुम्हारे बैठने से जीत मर गया, तेरा कर्म हुआ कि नहीं हुआ, अब इसका भुगतो, तुम बोलते सांस लेते हो कितने जीव मर रहे हैं, चलते हो कितने जीव मर रहे हैं, तो कर्म से तो तुम बंद कर ही नहीं सकते हो ना, तो कर्म कभी नहीं छोड़ सकते, कर्म की आसक्ति को छोड़ना है वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है कर्म की आसक्ति को छोड़ना, लेकिन बार बार सुनते सुनते आस्ते आस्ते कुछ आसक्ति छोड़ने की, आगे प्रसाद लाए ये कर्म की आसक्ति छोड़ी ना, कमाया मेहनत से आप हो, फिर आधा दीनार दो दीनार खर्च करके केला लाए आना, तो ये आसक्ति छूटी ना थोड़ी भाई, कुछ तो आसक्ति छूटी ना, ऐसे बहाना तो हो गया ना कोई ना कोई, ये मंदिर में आ गया प्रसाद तो आसक्ति छूटी कि नहीं छूटी भाई, कुछ तो जेब से निकला ना, तो आसक्ति तो उसमें थी, कमाया तो हमने था लेकिन ये सेवा में लग गया। तो ये आसक्ति ऐसे थोड़ी थोड़ी छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। एक सेठ आता था सत्संग में, पीछे जूतों के पास बैठता था। जब कथा समाप्त हुई तो उस जमाने में उसने दो चांदी के रुपये कथा के ऊपर रख दिए, तो महात्मा ने उसको प्रसाद भी बादाम का दे दिया, माला भी पहना दी। तो लोगों ने कहा महाराज पैसा रखा है इसलिए आप इसका सम्मान करते हो क्या, ये पैसे का धनमान करते हो क्या? महाराज ने कहा ये 7 दिन से जूतों के पास बैठा था, कभी इसको बुला के माला पहनाई प्रसाद दिया? बोला नहीं। तो बोला आज क्यों दे रहे हैं? बोला आज इसके त्याग का सम्मान कर रहे हैं, आज इसने पैसा दे, इसके पास लाखों पड़ा था लेकिन आज ने इसने दो का त्याग किया है, ये त्याग का सम्मान है, इसके पैसे का सम्मान नहीं है। पैसा तो पहले भी इसके पास पड़ा था, पहले रोज पैसा था, इसको मालिक तो यही था ना, पैसे को बैठते तो उधर था, कभी बुलाया था? नहीं बुलाया ना। आज जो त्याग किया है इसका सम्मान किया है, पैसे का सम्मान नहीं है। तो त्याग का सम्मान होता है, कर्म का सम्मान नहीं होता। त्याग मुख्य है जीवन में, त्याग जो करता है, त्याग तपस्या, ये भारतवर्ष जो है सारी भूमि जो खारे समुद्र के पानी से घिरी है इसका नाम भारतवर्ष है, और ये तप और त्याग की भूमि है। ये नाम भी महाराज भरत ऋषभदेव के पुत्र के पीछे इसका नाम हुआ है, और उसके पिता ने शिक्षा भी भगवान ऋषभदेव ने दी है, तपो दिव्यम पुत्र का, बेटा दिव्य तपस्या करो। ये तपो भूमि है, यहाँ ने भगवान ने भारत वर्ष का आराध्य देव नर नारायण है बद्री का आश्रम में, वो भगवान तपस्या की मूर्ति है, तपस्या करने के लिए आए हैं। तो भगवान ही यहाँ इस भारत वर्ष का आराध्य देव तपस्या के लिए आए, हमको तपस्या सिखाए। तपस्या का अर्थ त्याग भाई, तपस्या का अर्थ नहीं करो ना जो कुछ काम छोड़ दो थोड़ा सा, तो तपस्या त्याग ये इसका सम्मान होता है। जीवन में तपस्या और त्याग करेंगे उतना ही आध्यात्मिक उन्नति होगी, बाकी कर्म कर्म का कोई कर्म की बात नहीं कर रहे भगवान, तो ये बहुत बड़ा विशेष है। संगम त्याग तो करो थी है, जो भी, ये ऐसे नहीं कह रहे भगवान के भाई ब्राह्मण करे या सन्यासी करे, जो भी करे, कौन से देश का हो कोई बात नहीं, सर्वकालीन हो, सर्वभौमिक है, सर्वजानिक स्टेटमेंट है ये। देखो भगवान की भाषा कैसी है, संगम त्यक्त्वा करोति यह, जो भी करे, कहां का करे, अमेरिका का करे, हाँ अमेरिका का करे तो भी ठीक है, अफ्रीका करे हाँ, भारत का करे हाँ, सन्यासी करे हाँ, ब्राह्मण करे हाँ, शूद्र करे हाँ, कोई भी करे। तो भगवान के नजर में कोई ऊपर छोटा बड़ा नहीं है, देश काल का अंतर भगवान की नजर में नहीं है। तो भगवान जब बोलते हैं तो सर्वजानिक बोलते हैं, मतलब सबके लिए बोलते हैं, सर्वकालीन बोलते हैं, सब समय के लिए बोलते हैं, ऐसे कभी भी नहीं कहेंगे अब मैं ये स्टेटमेंट चेंज करता हूं, ये मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, ये मेरा मत तो नित्य है, इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, कमेंडमेंट नहीं होगा, इसमें अमेंडमेंट नहीं होता है। और किसके लिए, मानवाः, ये मानव जाति के लिए, जहां भी मानव रहता है अपने आप को मानव कहता है उसके लिए ये भगवान के वचन है। ये विशालता है, इसलिए हम कहते हैं एक सूर्य जब पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई अमेरिका का सूर्य अलग तो नहीं है ना, चाइना का सूर्य अलग है ना, इंडिया का अलग है ना, वो सूर्य एक भगवान श्री कृष्ण का शिष्य ज्योति अध्याय में इमं विवस्वते योगम है कि नहीं है। तो भगवान का एक शिष्य अगर पूरे विश्व को प्रकाश दे सकता है तो भगवान की ये गीता पूरे विश्व का कल्याण कैसे नहीं कर सकते। एक सूर्य से सभी प्रकाश ले रहे हैं, कोई अब किसी देश का अलग सूर्य तो नहीं बना ना आज तक, तो फिर एक भगवत गीता का शिक्षा, और बहुत से लोगों ने इसका लाभ लिया है, इसके ऊपर बड़े बड़े विद्वानों ने पाश्चात्य देशों के इसका अध्ययन किया, ऐसा अद्भुत शास्त्र है और दिव्य है, और इसको समझने के लिए कई जीवन के लोगों के बीत गए अभी तक। और अर्जुन का कमाल देखो, 45 मिनट में समझ भी दिया, उसके ऊपर काम भी करके दिखाया, तो ये बहुत बड़ा अद्भुत। तो क्या करना चाहिए, किसके लिए काम करना चाहिए, ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए काम करना चाहिए, इसका अर्थ ये, अथवा ब्रह्म भूत में स्थित होकर काम करना चाहिए जिसमें आपके काम में आसक्ति न हो। किसके लिए काम करना चाहिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, हम किसके लिए काम करते हैं। 11वें अध्याय में आएंगे ना, तब भगवान विश्व रूप का दर्शन कराने के बाद आदेश देगा, मत कर्म करण का काम मेरे लिए करो। अभी ब्रह्म यहाँ लिखा है पांचवें में ब्रह्म है, ग्यारहवें में कहेगा मत, ऐसे छाती हो के कृष्ण अर्जुन कर मत कर्म मत परमो मत भक्त, तीन बार मन मैं कह, शरीर से काम मेरे लिए करो, मन से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करो और दिल से मुझसे प्रेम करो। भक्ति का अर्थ है प्रेम करना, वहां मन तीन बार मन करेगा, यहाँ ब्रह्म क्योंकि ये जैसे पहले दर्जे में आया, दूसरी क्लास में आया, चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में, ग्यारहवीं कक्षा में आते आते बारहवें अध्याय में भक्ति योग आ जाएगा। उसके बाद भक्ति योग की पुष्टि के लिए बाकी अध्याय आस्ते आस्ते आएंगे। तो ये बहुत इसको एक श्लोक में से कभी इसका अर्थ निकलेगा नहीं, क्योंकि दो आदमी की बातचीत है, कृष्ण अर्जुन संवाद है, इसलिए दो बात जब कर रहे हैं तो उसको आगे से पीछे तक उसको सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। असल में बीच में वो प्रश्न के कारण बीच में एक अध्याय आ गया ना, तो ये अभी वही चल रहा है, कर्म योग ही चल रहा है, लेकिन कर्म योग में कर्म संन्यास आया, लेकिन बात फिर भी कर्म योग की चल रही है। इसलिए कुछ महात्मा पांचवें अध्याय को कहते हैं ब्रह्म आधाय कर्माणि, उसमें ब्रह्म आधाय कर्माणि को मुख्य ले लिया कि भगवान अर्थ काम करना, ये उसका दूसरा अर्थ। कुछ आचार्यों का मत है पांचवें अध्याय का नाम ईश्वर अर्थ काम करना, ब्रह्म आधाय कर्माणि से ये शब्द लिया गया कि किस लिए काम करना चाहिए, कृष्ण अर्थ। जहाँ आगे भगवान कहता मेरे लिए काम करो तो कृष्ण अर्थ कर्म करना, तो तीसरा अब ये क्या करो, काम किसके लिए करो, भगवान के लिए। कैसे करो, फल में फल की आसक्ति छोड़ के करो, तो होगा क्या, लिप्यते न पापे न, उसको कभी पाप नहीं लगेगा। लिप्यते से न पापे, लिप्यते का मतलब लेपायमान होना, लेपायमान होना का मतलब जिसको पाप चपक जाए उसको पाप नहीं चपकेगा। फिर उदाहरण देते हैं कैसे नहीं चपकेगा, पदम पत्रम इवाम्बसा, अम्बसा मतलब पानी, जैसे पानी के अंदर कमल के पत्ता पानी में होगा, उसके ऊपर पानी डालो कभी भी टिकेगा नहीं, कमल के पत्ते के ऊपर पानी नहीं टिकता। ऐसे ही जो आसक्ति रहित ब्रह्म आधाय भगवत भावना से कर्म करता है उस के ऊपर कोई पाप नहीं लगता, उसको कर्मी होते हुए भी अकर्मी होता है, उसको कर्म का न बुरा फल न अच्छा फल भोगने की आवश्यकता है, उसका कर्म भगवान की सेवा हो जाता है, तो वो सारे फल वहाँ समाप्त हो जाते हैं। पदम पत्रम इवाम बता, वो तो कमल के पत्ते की तरह निर्लेप रहता है। इसलिए नाव को समुन्द्र में होना नॉर्मल है, पानी में जहाज चलेगा रोड पे तो चलेगा नहीं, जहाज पानी में चलेगा तभी, नाव पानी में चलेगी तभी हमें जाके मंजिल पे पहुंचाएगी, लेकिन पानी नाव में नहीं आना चाहिए। ये दो शब्द याद करने, पानी में नाव रहे तो कोई बात नहीं, तभी पानी रहने, पानी में रहने के लिए नाव है, लेकिन पानी नाव में आ गया तो डूब जाएगी। तो हम संसार में रहे कोई परेशान नहीं, संसार हम में आ गया तो डूब जाएंगे। ये इस श्लोक का तात्पर्य यह कि संसार में रहते ही एक बहुत बड़े कवि ने लिखा है कि हाथ पांव बांध के मुझे तालाब में फेंका है और ऊपर से कहते हैं कपड़े मत भिगाना, ये उस कवि के भाव है। मुझे अपनों ने ही हाथ पांव बांध के, मैंने अपने आप को हाथ पांव बांध के पानी में डाला है और ऊपर खड़े जो खड़े हैं वो कहते हैं कपड़े मत भुगाना। इसका अर्थ है कि हम सभी संसार के अंदर आए, संसार सागर तो है लेकिन इसके अंदर कर्मों से दोबारा एक शरीर लेके कपड़ा दोबारा पहनना न पड़े, ऐसे गीला मत करना। वो कबीर ने जैसे गाया चिद्र चादर या जैसे चादर लाए ऐसे धो लेके देना, इसको खराब मत करा संसार, ये चादर ये शरीर है, कपड़ा जिसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं वासां श्री जिरनानी, शरीर में ये कपड़ा है तो इसको मैला नहीं करना है, कर्मों से लिपायमान नहीं करना है। तो ये श्लोक क्या हो गया कि ब्रह्म के लिए काम करो, तो काम किससे करें, फिर काम किससे, काये न मनसा बुद्धया, शरीर से मन से बुद्धि से जो भी काम होता है, तीन मन बुद्धि वचन ये जो भी है, केवल इंद्रिय रखी, यहाँ केवल रखते अपनी इंद्रियों को शुद्ध करके, ये सारे काम मन से होगा, इंद्रियों से होगा, बुद्धि से होगा, काया शरीर से होगा, तो शरीर को शुद्ध करे। योगी न कर्म कुंते, योगी कर्म करते, कौन से योगी? निष्काम कर्म योगी, कर्म करते हैं। संगम त्यक्त्वा धनंजय, काय के लिए करते हैं, फिर भाई भगवान के लिए करते हैं तो क्या मिलता है उनको? पाप नहीं लगता है तो मिलता क्या है? तब कहते संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। वो ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मशुद्धि के लिए। हाँ, क्यों काम करते हैं? आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ये अंतःकरण के ऊपर कई जन्म का कर्मों का इम्प्रेशन पड़े हैं, कर्मों के, वासनाओं के। ये तो मन हमारा ऐसे है जैसे ब्लैक बॉक्स नहीं होता है, जहाज का कर्च होता है तब काला डब्बा जिसको कहते हैं, तो नाम ही काला डब्बा है। काला डब्बा ये मन हमारा कई कर्मों से, एक वो किसी ने इससे पूछा हमारे सचिव शर्मा से कि भगवान ऐसा काला क्यों है? मतलब भगवान बहुत चमकीला था, लेकिन जब से परमात्मा के रूप में हमारे दिल में बैठा हो, हमने इतने काले काम किए कि उसका रंग ही काला हो गया। बड़ा गोरा था भाई। हमारे दिल में जब से आया और हमने ऐसे काले काले काम किए, उसको भी रंग उसके ऊपर साफ सान होके, इसलिए आत्म शुद्धि अंदर इतना साफ करो कि वो चमकता हुआ दिखाई दे, जगमग जगमग चमकता हुआ दिखाई दे। तो इसके बाद 12 श्लोक इस संख्या का श्लोक है, लेकिन हम मेरे ख्याल में यहाँ कथा को विराम देते हैं। और इसके इस अध्याय में 2 श्लोक अच्छे हैं, जब भी आप पढ़ें तो दो बहुत, मैं मेरे ख्याल में 2 दिन इस श्लोक के ऊपर जब आया था, 9 और 10 को इन 2 श्लोक 5वें अध्याय के लिए थे, 22वां श्लोक और 23वां श्लोक। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है 2 श्लोक। यही संसप्रसजा भोगा दुख योनिया एवते, जो भी इंद्रियों के द्वारा भोग किए जाते हैं उस भोग के गर्भ में दुख जन्म लेता है। इसको हम आधुनिक भाषा में कहते हैं दुकानदार की, बाय वन गेट वन फ्री। भोग करो दुख मुफ्त में खरीदो, आप भोग करो दुख आपके पीछे अपने आप आएगा, आपको उसको लेने की जरूरत नहीं है। ये भाई हर इंद्रियों के भोग के साथ कि गर्भ में दुख जन्म लेता है और आज अंत अंत, और ये सुख आज शुरू हुए पर खत्म हो जाएंगे। नेशु न रमते बुद्धा बुद्धिमान, इसमें रमण नहीं करते। और दूसरे ने सुख का साधन बताया, वो कि सुख असल में कैसे मिलेगा। दो ये श्लोक 2 बड़े सुंदर श्लोक हैं 5वें अध्याय के, ये 5वें अध्याय का मणिया और हीरा है 2 श्लोक। यहाँ विराम देते हैं 5 मिनट कोई किसी का जिज्ञासा प्रश्न आज के श्लोक के ऊपर है तो। एक उदाहरण उसमें दिया हुआ है जो गीता में आपने पढ़ा, बड़ा अच्छा था, आसक्ति के विषय में, कि डॉक्टर अपने बेटे का ऑपरेशन करने में घबराता है क्योंकि बेटे से आसक्ति है इसलिए, लेकिन वही दूसरे के ऊपर ऑपरेशन करने में बेफिक्र होता है। तो इस संसार में ये उदाहरण है कि आसक्ति जहाँ होती है वहाँ आदमी घबरा जाता है, आसक्ति नहीं है तो बेफिक्र। इसलिए छोड़ना क्या है संसार में? कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ना है। लेकिन ये कहना आसान है, ये करने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्म नहीं कई जन्म लग जाते हैं। इसको प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए बहुत मुश्किल है ये काम, इसलिए ऐसा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू। असल में वो मंदिर में पेटी रखते हैं, भगवान को भिखारी नहीं है, लक्ष्मीपति है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा सिखाने के लिए कि कुछ त्याग करना सीखो। उसका नाम ही है प्रणामी, मतलब जब प्रणाम करो तो भगवान को भेंट चढ़ाया करो। क्यों? क्यों? इससे आपके हृदय शुद्ध होगा, थोड़ी त्याग आपके जीवन में आएगा। इसलिए वो भगवान को गजब जरूरत नहीं है, वो लक्ष्मीपति है, वो उसको आप क्या दे सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी छोटी शिक्षा है ऐसे करने का। पहले लिखा गृहस्थी को क्या करना चाहिए, कम से कम एक व्यक्ति को भोजन करा के फिर भोजन खाना चाहिए, ये पहला त्याग सिखा लिया। चूल्हे के ऊपर पहली रोटी गाय के लिए दे दो, दूसरी आखिरी रोटी कुत्ते को दे दो, ये सब समाप्त हो गया, ये सब त्याग सिखाया हुआ था, वो अब नहीं रह गया। ये त्याग में, त्याग और तपस्या मानव का आभूषण है, उससे आदमी सुंदर होता है, भगवान को प्रिय बनता है और समाज के में भी वो सम्मान्य होता है। बाकी भोग करने वाले तो भटक रहे हैं सब जगह, उसको कौन पूछता है। धन्यवाद श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की, श्री कृष्ण भगवान की, भक्त राज अर्जुन की, और हरे कृष्ण, धन्यवाद।
अब हम समापन करेंगे।